पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम चर्चा में आया, लेकिन ऐसा उनकी तारीफ करने के लिए नहीं बल्कि आलोचना करने के लिए हुआ। ग्रीन्स पार्टी की सेनेटर लैरिसा वाटर्स ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान दुनिया भर में मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया। अपने भाषण में उदाहरण देते हुए उन्होंने सबसे पहले भारत का नाम लिया।
In India, Prime Minister Modi is rounding up critics in the shadow of the virus. Indian authorities have arrested dozens in a nationwide crackdown with arrests based on scant evidence. Those who have been detained include a youth activist who raised awareness about police violence against Muslims, an academic who opposes the Indian government's dangerous and anti-Muslim citizenship law, and a co-founder of a women's collective.
द ह्यूमनिज्म प्रोजेक्ट के दीपक जोशी इसे एक बड़ा संकेत मानते हैं। वो कहते हैं कि इससे पता चलता है कि दुनिया की नजर भारत पर है।
अब दुनिया की नजर जा रही है भारत में, जो मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है और सभी प्रदर्शनकारियों और एक्टिविस्ट के खिलाफ जो एक्शन किया जा रहा है कोविड की आड़ में, ये किसी से छुपा नहीं है। तो भारतीय मीडिया कितना ही छुपाए, ये काफी स्पष्ट नजर आ रहा है पूरी दुनिया को। और ये पहली बार नहीं है ये आवाज उठाई है किसी ने पार्लियामेंट में। उससे पहले ये मुद्दा यूएस में और यूरोपियन पार्लियामेंट में भी उठ चुका है। प्रमिला जयपाल जो डेमोक्रेट है, उन्होंने दिसंबर 2019 में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। उसके अलावा 6 यूएस शहर अभी तक रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ।
दीपक जोशी कहते हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर सरकार अपने विरोधियों को निशाना बना रही है।
अभी जो हो रहा है वो तो सबसे प्रोमिनेंट ये है कि कोविड की आड़ में जो एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी और जो भी सरकार के जो खिलाफ, जिनको सरकार मानती है उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनकी आड़ में उन पर एंटी टेररिज्म कानून जो है उन पर डाला जा रहा है। तो ये काफी बड़ी समस्या है। इससे पहले ऑफकोर्स और भी कई चीजें हो रही हैं। पिछले जब से बीजेपी सरकार में आई है 2014 में और 2019 में जब दोबारा इलेक्ट हुई है, तो ये काफी हद तक बढ़ गया है। एक तो है मुस्लिम्स के खिलाफ और रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग के, चाहे उनके किसी भी बहाने बीफ रखने के बहाने।
लेकिन जे शाह इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि भारत सरकार तो कोविड से निपटने में सभी की हर संभव मदद कर रही है, फिर चाहे वे सरकार के विरोधी ही क्यों ना हो। ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष जे शाह कहते हैं,
कहां से भाई, क्या किया? ऐसा तो कोई अब वाकया नजर में नहीं आ रहा। ऊपर से कोविड को लेके जो पॉलिसी रही है भारत सरकार की वो सराहनीय है, क्योंकि सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर सार्वजनिक रूप से एक एक्शन प्लान बनाया जा रहा है और जो सेंटर है पूरी मदद कर रहा है कोविड के लिए। हर स्टेट जो उनके क्रिटिक्स भी है, हार्ड क्रिटिक्स को जो काफी सीएम्स में से, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं क्या कहते हैं, कोविड से डील करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे ये कौन से मुद्दों पर कौन से इंफॉर्मेशन कहाँ से इनके पास आई है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये सही है और हमें उनको उजागर करना है, उनको ज्यादा इन्फॉर्म करना चाहिए।
लैरिसा वाटर्स ने अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। भारत सरकार ने पिछले साल संविधान की धारा 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म कर दिया था, जिसका खासा विरोध हुआ था। सुश्री वाटर्स ने कहा,
"And authorities continue to impose harsh and discriminatory measures in Kashmir just over a year after the Indian government drastically eroded Kashmiris' rights to self-determination. To quell dissent and to keep news away from the outside world, it continues to maintain stifling restraints with widespread detentions and drastic limits to the internet, to name a few abuses."
लेकिन जय शाह कहते हैं कि धारा 370 का हटना एक सकारात्मक घटना थी।
ग्रीन्स पार्टी मैं जैसा तक समझता हूँ वो वुमेन राइट और एलजीबीटी राइट्स के लिए काफी एक्टिविज्म करते हैं, वो काफी उसके बारे में बोलते हैं। आर्टिकल 370 जब था, इट वॉज बायस्ड अगेंस्ट वुमेन, क्योंकि अगर वहां का कोई मर्द बाहर, कश्मीर का कोई मर्द बाहर शादी करता था, उसको सारे वो राइट्स थे जो कोई भी कश्मीरी सिटीजन को होते थे, लेकिन अगर कश्मीर की कोई औरत बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करती थी तो उसको कोई राइट्स नहीं थे। एलजीबीटी को भी वहां पे कोई राइट्स नहीं थे, इट वॉज क्राइम। वहां के गोरखा, वहां के दलित, वहां के वाल्मीकि, वहां के सिख जो वेस्टर्न पंजाब से आए, उनको कोई राइट्स नहीं थे। 370 के हटने के बाद उन सभी माइनॉरिटीज को वहां राइट मिले हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है।
हाल ही में कई देशों में भारत के नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। न्यू साउथ वेल्स की संसद में भी ग्रीन्स पार्टी के डेविड शुब्रिज ने पिछले महीने ये मुद्दा उठाया था और ऑस्ट्रेलिया की सरकार से आग्रह किया कि भारत के साथ व्यापार समझौतों में मानवाधिकारों की सुरक्षा को एक शर्त बनाया जाए। हालांकि जे शाह कहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है और वहां जो भी होता है नियम कानूनों के तहत होता है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही एक रूल बेस्ड डेमोक्रेसीज हैं, और वही रूल्स के दायरे में रहकर वो दुनिया में कहीं भी अगर कोई घटनाएं हो रही है जिससे लोगों को प्रभावित हो रहे हैं, तो पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटीज को शरण दे दी है अपने रूल्स और अपने 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 सिचुएशन के हिसाब से। भारत ने भी सीएए का जो प्रावधान लाया उसके थ्रू पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटीज जो थी नेबरिंग कंट्रीज में उसको शरणागति दी है।
लेकिन दीपक जोशी कहते हैं कि दुनिया भर की संसदों में भारत के इन मुद्दों का उठना बताता है कि भारत दुनिया की निगाहों से बच नहीं सकता।
इसका इसका काफी फर्क पड़ता है। एक तो भारत की सरकार को और भारतीयों को यह एहसास होता है कि दुनिया की नजरें हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बाकी पार्टीज भी ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर ये प्रेशर डालेंगी कि भारत के साथ जो डिप्लोमेटिक और ट्रेड निगोशिएशंस होती हैं उसमें उसमें ये मुद्दा उठाया जाए, और एक्चुअली ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं उस पर उसमें ह्यूमन राइट्स क्लॉजेस वगैरह डाली जाए, ताकि जो भी, क्योंकि ये जो सिविलाइज और सिविल सोसाइटीज हैं दुनिया भर की, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, मॉडर्न कंट्रीज हैं, उनमें बड़ा जरूरी है कि किसके साथ वो ट्रेड करे, या अपना यातायात हो या उनके साथ ट्रेड हो, उसमें इन चीजों को बड़ा नजर रखा जाता है। जैसे चाइल्ड लेबर एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उसी तरह मानवाधिकार भी उनमें बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा माना जाता है इन सब देशों में। तो धीरे धीरे मुझे पूरा यकीन है ऑस्ट्रेलिया में ये शुरू हुआ है, बाकी पार्टीज भी सरकार पर प्रेशर डालेंगी, और दुनिया के बाकी हिस्सों में भी ये सब भारत में जो हो रहा है उसकी उसकी जो जागरूकता है, उसकी जो अवेयरनेस है, वो जागेगी।